آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہماری نسلیں یہ ہمارے پروگرام میں ان کے سنورنے اور ان کے بہتر ہونے پر ہمارا بیان جاری ہے. پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. جس نے دن و رات میں میری طرف, حدیث پاک ہے, جس نے دن و رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کے تعلق سے ابتدان میں تھوڑی بہت آپ کو عرض کروں گا کہ بچہ اور نیند یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور کئی گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی. تو نیند پوری نہ ہونے کے تعلق سے اور نیند کے تعلق سے پہلے تو ایک معلومات کی بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ پیدائش سے ایک سال کی عمر تک کا بچہ تقریباً 12 سے 16 گھنٹے سو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ 1 سے 2 سال کی عمر کا بچہ یہ 11 to 14 آورز اس کی نیند ہے. پھر 3 سے 5 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ 10 to 13 آورز گھنٹے کی اس کی نیند کا بیان کیا جاتا ہے. پھر 5 سے 12 سال کی عمر کا بچہ 9 سے 10 اور 12 سال سے اوپر کی عمر میں ایک نارمل بالغ لڑکا کی جو نیند ہے وہ ایک نارمل ایک انسان کی طرح 8 گھنٹے کی ایوریج کے ساتھ آپ لیں. اب ہمارے یہاں اس وقت جو پرابلم چل رہا ہے بچوں کے ساتھ وہ نیند کی کمی ہے. اگرچہ نیند کی کمی کے کئی اسباب میرے پاس لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ فرسٹ سیگمنٹ ہم نے اس کو بنایا ہے. اس فرسٹ سیگمنٹ میں ظاہر بہت ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا, میں کئی چیزیں پڑھی اس کی. دو تین چیزیں میجر ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ ڈاکٹر زیرک سے ہم اس معاملے میں ان کی ایکسپرٹ ویو بھی لیں گے, ماہرانہ رائے بھی لیں گے کہ بچے کی نیند کی کمی یہ اس کے اندر چڑچڑاپن, اس کے اندر جاریانہ انداز اور اس کی کئی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے نیند کی کمی. اب نیند کی کمی کیوں ہوتی ہے, اس کی ایک دو بنیادی وجہ میں آپ کو بتا. نمبر ایک, اس کے کھانے پینے کے تعلق سے احتیاط نہ ہونا جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا بچہ. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا اس طرح کی چیزیں یعنی الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہیں وہ ہم اس کو کنٹینیو وہ لے کر بیٹھا رہے ہیں. آپ تقریباً اب بچوں کا میں جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنے بیڈ پر بستر پر لڑکا لڑکی بچہ تھوڑا بڑا, کیونکہ یہ پرابلم اب چل رہا ہے نیند کا پرابلم ہمارے سوسائٹی میں اس وقت چل رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ بنیادی وجہ جو اب بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موبائل فون کو یا پی سی ٹیبلٹ کو या इनकी आंखों के सामने टीवी चल रहा होता है। आपको पता है कि पहले हमारे यहाँ टीवी जो था ना, एक कमरे में होता था, इसको हम वो टीवी लॉन्च के तौर पर वो मशहूर था कि टीवी लॉन्च। अब टीवी लॉन्च के बजाय हर बेडरूम एक तरह से उसमें टीवी है, और अब बड़े बड़े स्क्रीन के और छोटे स्क्रीन के टीवी अब लगे रहते हैं। अब सोने से पहले पूरी तरह आप टीवी देख रहे हैं, या आंखों के सामने आपकी स्क्रीन है वो देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा उसको देख रहे हैं। कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। तो ये जो चीज देखी जा रही है, इसकी वजह से जब आप इसको जब क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, और बंद करने के बाद जब आप सोने की तरफ जाते हैं, स्लीपिंग मोड में जाते हैं, तो वो दिमाग की वो पोर्शंस कि जो आपको सोने में मदद करते हैं, उनको एक्टिव होने में भी टाइम लगेगा, और आप सो नहीं सक रहे आप। और ये बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर जब बच्चा उठ रहा है तो उसका बदन निढाल है। ये आपको तजर्बा होगा, मैं बड़ों से भी बात कर रहा हूं, कि आप 8 घंटे सो जाएं, आप 10 घंटे तक लेटे रहे, लेकिन अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई, जिसको कहते हैं नींद का होना, बार बार आंख खुल रही है, दिमाग जाग रहा है और बेचैनी है, आप उठने के बाद भी आप अपने अंदर फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा मैं थका थका सा। ये नींद की एक बड़ी बात होती है कि जो प्रॉपर नींद हो जाए ना, गहरी नींद जिसको कहते हैं, एक अच्छी नींद हो जाए, तो अच्छी नींद के बाद जब आप उठकर बैठते हैं तो आप अपने आपको एक बड़ा ही कंफर्टेबल और वो एक थकान जैसे आपकी उतर गई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेमत है ना नींद। आप पूरे दिन की थकान को नींद के साथ उतारते हैं, कि फिर वो आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स होते हैं, वो दिमाग खुद भी एक रिफ्रेश हो चुका होता है। लेकिन इन चीजों की वजह से खाने पीने की बेएहतियातियां, सोने वो अब वो बेड पर ही बैठा हुआ बच्चा, खाना भी बेड पर खा रहा है, तो होमवर्क भी बेड पर कर रहा है, तो अब जनाब वो डिवाइसेस बेड पर लेकर बैठा, अब बेड पर सो भी जाएगा, तो वो उसका वो माहौल ही नहीं बन पा रहा है सोने का। तो मेरी बड़ों से ये दरखास्त है कि अपने बच्चों पर करम करें, और इन्हें सोने से पहले खाने पीने के ताल्लुक से कि कितनी देर पहले इनका खाना पीना रुक जाना चाहिए, उसके बाद सोने के माहौल, जो बेड, जो सोने की जो जगह होती है, बिस्तर है, वो बिस्तर की लोकेशन, और उसके बाद ये चंद घंटों पहले सोने से चंद, ये मैं आप बड़ों को भी समझा रहा हूँ और नौजवानों को भी समझा रहा हूँ, बच्चे और बच्चियों को भी अर्ज कर रहा हूँ कि चंद घंटों पहले सोने से आप डिवाइसेस को खत्म कर दें, मोबाइल रख दें, हर चीज रख दें। और मेरा इसमें मशवरा ये कि फिर आप थोड़ा औरादो वज़ाइफ पढ़ लें, भले चहलकदमी करते पढ़ लें, बिस्तर पर ही पढ़ लें, बिस्तर पर बैठ कर, ये आपको आदत बनानी पड़ेगी। बड़ों को मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपको आदत बनानी पड़ेगी कि चूंकि छोटे बच्चे उम्रमन वालिदैन के साथ उसी कमरे में सो रहे होते, आराम कर रहे होते, जब वो देखेंगे कि हमारे बड़े मिसाकतों पर जब आप बेड पर हैं, बिस्तर पर हैं, तो आप क़िबला रूह चेहरा कर कर औरात व वज़ाइफ पढ़ लें, सूरे फलक, सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास पढ़ ली, दम कर लिया, जो एक बचने का, जादू वगैरह से बचने का एक तरीका है, फिर सोने से पहले एक औरात व वज़ाइफ, तस्बीह फातिमा वगैरह, इस तरह की चीजें पढ़ लें, और उसके बाद आप लेटें और थोड़ी देर पहले ये सारा चीजें कर लें, तो हो सकता है कि आपको नींद अच्छी आ जाए और आपके बच्चों को भी नींद अच्छी आ जाए, उनकी आदत हो जाए। ये पहला मेरा सेगमेंट था नींद के ताल्लुक से। डॉक्टर जीरक, क्या कहते हैं आप?
जी, आपने स्लीप हाइजीन के हवाले से गुफ्तगू की, जो कि एक बहुत जरूरी पहलू है नींद के हवाले से, और आपकी इन बातों को मैं एंडोर्स करता हूँ। उसके साथ साथ कुछ छोटे बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए, तो बाज दफा छोटे बच्चों को जब अलग कमरे में सुलाया जाता है तो उनको थोड़ा खौफ होता है, इसी तरह अंधेरे का भी खौफ होता है और मजीद डर होता है। बाज दफा छोटे बच्चों को नाइट में जाते हैं जिससे वो डर जाते हैं, इससे भी नींद डिस्टर्ब होती है। और इसके साथ साथ जो स्लीप हाइजीन के हवाले से एक बात का इजाफा करता चलूंगा कि हमें सोने के लिए एक केमिकल हमारा जिस्म रिलीज करता है, मेलाटोनिन, और तकरीबन रात 9 बजे के बाद ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम एक रोशनी वाले एनवायरनमेंट में रहेंगे, और बिल्कुल खसूस जो मोबाइल फोन और लैपटॉप और टीवी की रोशनी है, तो इससे वो हार्मोन जो है वो सही मानों में उसकी मिकदार पूरी रिलीज नहीं होती, जिससे जो है वो नींद भी नहीं आती। इसके साथ साथ दौरान नींद कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चे की नींद अच्छी तरह नहीं होती। बिलखसूस वो बच्चे जो खराटे लेते हैं उनके हवाले से यह अर्ज है कि अमूमन उनके टॉन्सिल्स या एक और एडेनोइड्स वजूद होता है वो बड़े होते हैं, तो बच्चे को तो महसूस नहीं होता लेकिन खराटों की वजह से उसकी सांस रुकती है और फिर उसे सांस लेने के लिए जागना पड़ता है और उसे बच्चे को याद नहीं रहता कि मेरे साथ ऐसे हुआ। लिहाजा अगर जो बच्चे खराटे वगैरह लेते हैं उनका डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए और अगर उनकी नींद सही नहीं होगी तो जैसे आपने इरशाद फरमाया कि आगे चलकर दिन में जो है वो टायर्डनेस के हवाले से चिड़चिड़ापन, इसी तरह कंसंट्रेशन नहीं होगी, उनकी स्टडीज भी अफेक्ट होंगी। तो ये उम्र के हिसाब से होता है, छोटे बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़े बच्चों में फिर जैसे आपने कहा कि ज्यादातर उनकी रूटीन सेट नहीं हो पाती डिवाइसेस के हवाले से और बाज दफा पेरेंट्स जो है ये इतने स्ट्रिक्टली रूटीन अप्लाई भी नहीं करते।
दो बातें मजीद मैं अर्ज करूंगा जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। नंबर एक, ज़हनी दबाव। हमारे यहाँ अब एक कल्चर बन चुका है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये कल्चर बढ़ा है और इसने हमारे बच्चों को और हमारे बड़ों को, नौजवानों को बहुत इफेक्ट किया है। हो सकता है शायद मेरा ये मौजू तफसील की तरफ चला जाए और मेरा दूसरा सेगमेंट रह जाए, लेकिन वो है ज़हनी दबाव। हमने हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटली प्रेशर का शिकार किया हुआ है और ये जो मेंटली प्रेशर है इसमें ज्यादातर जो मेंटली प्रेशर आ गया वो तालीम के नाम पर आ गया कि प्रेशर बहुत है। अब क्लास के अंदर बस तुम्हें फर्स्ट आना है, तुमने पास होना है, तुमने अच्छे नंबरों से पास होना है, मतलब एक तरगीब के तौर पर होना एक अलग है, लेकिन इतना प्रेशर है कि बच्चे को पता है कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो स्पेशली एग्जामिनेशन के दिनों के अंदर बच्चे की नींद उड़ जाती है कि मुझे अब्बू गुस्सा करेंगे, अम्मी गुस्सा करेगी, टीचर गुस्सा करेंगे, रिश्तेदारों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये जो मेंटली स्ट्रेस है ना, इसने मैं आपको एक और पहलू बताना चाह रहा हूँ माजरत के साथ, थोड़ा सा हो सकता है टॉपिक से थोड़ा सा साइड में ले लूं। आपको मैं एक बताऊं कि इस वक्त नौजवानों में खुदकुशी के जो वाकियात हैं, जी हाँ, सुसाइड अटेम्प्ट, अब वो खुदकुशी में कामयाब हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग टॉपिक है, बट मेल एंड फीमेल, लड़के और लड़कियां जो इस वक्त सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें एक तादाद कामयाब भी हो जाती है, उनकी एक वजह मेंटली स्ट्रेस है और वो मेंटली स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव, वो ज़हनी दबाव का ताल्लुक तालीमी सरगर्मियों से है। ये आप रिसर्च कर लें, इसमें दुनिया के बाद ममालिकों ने हद कर दी है और मतलब वो कि नौजवान अगर जैसे कि स्कूल में फेल हो गया या इसके नंबर प्रॉपर नहीं आए या इसकी मार्कशीट सही नहीं आई है, इसका ग्रेड सही नहीं आया है, तो वो गोया के मतलब माँ बाप तो उसकी जान को आ गए ना और वो खुदकुशी कर, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं कि क्या होगा, क्योंकि अब जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगी, तो लड़का नहीं होगा तो लड़की का प्रॉब्लम हो जाएगा, अजीब व गरीब किस्म के। यानी इस वक्त दुनियावी तालीम हासिल करने वाली मेल एंड फीमेल कम्युनिटी जो है, जो लोग जो हैं उनमें जो सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, इनकी एक वजह ज़हनी दबाव है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप चाहे तो स्टडी कर लें, आप चाहे तो रिसर्च कर लें, जो दीनी इदारे हैं तालीम के, जहां कुरान और हदीस पढ़ाया जा रहा है और इश्क़े रसूल के जाम भर भर कर पिलाए जा रहे हैं, आप उन इदारों की मालूमात हासिल करें, वहां रब ने चाह तो आपको इस वजह से एक भी केस नहीं मिलेगा। लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में जो हमारी नस्लें आ रही हैं, वो नस्लें हमारी सिर्फ मेंटली स्ट्रेस, एक बेजती का खौफ और फ्यूचर मेरा डार्क हो गया इस वजह से इसका एज्यूम कर लिया जाता है اور اس کی وجہ سے یہ خودکشیاں کر کے حرام موت مرنے والی حرکتیں کرتے اور مر بھی جاتے ہیں. پھر جو خاندان میں رسوائی ہوتی ہے وہ ایک الگ. تو یہ بچپن سے یعنی بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر ایک ذہنی دباؤ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں, باپ رے باپ اب جناب اب یہ کلاس میں گیا یہ. اچھا پھر اس کی جو بے عزتی کلاس میں ہوتی ہے نا, جو ٹیچر اس کو کلاس یہ جو بھی استاد یا ٹیچر ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بچوں کی عزت نفس نہیں ہوتی؟ آپ اسے مطلب کہ 50 لڑکوں یا لڑکیوں کے بیچ میں کھڑا کر کے ذلیل کر رہے ہیں. آپ اس کو مطلب کہ اس کی پڑھائی نہ ہونے پر, اس کو یاد نہ ہونے پر, اس کی مطلب پڑھائی کمزور ہونے پر جو آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس کو فیل نہیں کر رہا سب کے سامنے؟ پھر جب بچے یوں 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 دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو اور یوں نظر کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا ان کے اوپر ایک عجیب و غریب اثر پڑتا ہوگا اور ان کے دماغ پر ایک عجیب و غریب اثر پڑتا ہوگا؟ اور پھر کلاس کے بعد جب ان کی بے عزتی ہوتی ہوگی, دیکھا, وہ اگلے دن پھر وہ دباؤ ہو گئے, اگلے پھر وہ دباؤ میں, یا تو وہ گیا ادارے سے یا تو بالکل تعلیم و تربیت سے دور ہو جائے گا, اور پھر وہ ایسی صحبت اختیار کر لے گا کہ پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا, یا پھر اس کا کچھ اور ہی نتیجہ نکلے جو میں بتا رہا ہوں. تو ذہنی دباؤ, یہ لکھا ہے میرے پاس, یہ نیند کی کمی کی وجہ کے ساتھ ساتھ میں لے گیا اس کو خودکشی کی طرف بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میڈیکلی طور پر بھی یہ ڈاکٹر بھی اس کو انڈوس کریں گے, اور ڈاکٹر شاید آپ کو کہیں گے کہ خدارا اپنی نسلوں کو اس حرام موت کی طرف جانے سے بچائیے, اور اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو مینٹلی اسٹریس سے بچائیے, اسپیشلی جو تعلیم کے نام پر آپ نے جو بچوں کو اپنے دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے اور ان کو پریشرائز کیا ہوا ہے, پاگل ہو گئے بچے پاگل. اچھا پھر نتیجہ ہوا یہ کہ سلیبس کیریکولم اوور لوڈ ہے, مطلب ایسے ہی سمجھانے لگے اور پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ بچے کا وزن زیادہ ہے کہ اس کے بے کی کتابوں کا وزن زیادہ ہے. مینٹلی اسٹریس, پڑھائی کا دباؤ, تربیت تو بظاہر اتنی نظر نہیں آتی, ویری سوری ٹو سے, اتنی زیادہ تربیت کا تو کوئی سا رجحان نظر نہیں آتا. کتاب کاپی, لکھو پڑھو لکھو پڑھو لکھو پڑھو, اور جناب آگے بڑھو, ریس لگی ہوئی ہے سب کی, بھاگ رہے دوڑ رہے دوڑ رہے دوڑ رہے, جو گر گیا وہ گر گیا وہ گر گیا کر کے لوگ بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے. اور وہ کیا, اس وقت شاید اگر آپ کی معلومات نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں, لاکھوں لاکھ تعلیم حاصل, جس کو آپ تعلیم آپ کہتے ہیں, وہ تعلیم حاصل کیے ہوئے نوجوان بے روزگار ہیں. یعنی ایک تو وہ اسٹریس, اوپر سے یہ اسٹریس, پہلے تعلیمی طور پر آپ نے ان کو پریشرائز کیا, جو بھی گرتے پڑتے وہ جو بھی پڑھ پڑھا کر نکل گئے, اب یہ کہ یہ فائلیں لے لے کر فیکٹریوں میں آفسوں میں جا رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, او گڈ ماسٹر, ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو, ایکسپیرینس, وی نیڈ ایکسپیرینس پرسن. وہ بولتا بھائی ابھی پڑھ کے نکلا ہوں, ایکسپیرینس کدھر سے لاؤں گا, سوری سوری وی نیڈ, وہ سورس چاہیے اس کو, رشوتیں چاہیے ان کو. جب گھر آتے تھکے آ رہے, فائلیں ہاتھ میں ہوتی ہیں, ڈائریکٹ باپ ماں کہتے بیٹا نوکری ملی؟ باپ کہتا نوکری ملی؟ نہیں ملی. کب تک گھر کی روٹیاں کھائے گا, کب تک گھر کی روٹیاں توڑے گا, تھک گیا ہوں میں. اور وہ باپ کی بات, اور وہ پورا دن نوکریاں ڈھونڈتا رہا, پہلے وہاں سے نکلا پھر ادھر نکلا. آپ سوچئے ہم اپنی نسلوں کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں, کس سمت لے کے جا رہے ہیں. ڈاکٹر زیرک,
کسی بھی عمر سے بچوں کو لے جائیں, ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ جو بچے اسکول کے ہوم ورک کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کل میں اسکول جاؤں گا تو ہوم ورک نہیں ہوگا, تو ٹیچر مجھے جو ہے وہ کہے گا یا شاؤٹ کرے گا. تو یہ جو اسٹریس ہوتا ہے, اینگزائٹی اس کو بولتے ہیں یا وری بولتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بچوں کی اچھی خاصی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بھلے ایگزام ہو یا نہ ہو. اور یقیناً جب ایگزام کی بات آتی ہے تو اس وقت ایڈیشنل سٹریس ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اور اس پہ پیرنٹس کا بہت بڑا اہم رول ہے کہ وہ بچے کی اس اینگزائٹی کا سبب بننا تو دور کی بات ہے, اس کی اینگزائٹی کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, بچے سے بات کریں. اگر بچہ اس حوالے سے پریشان ہے تو ان کو کہیں کہ بیٹا آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو ہیلپ کریں گے, آپ کو ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, انکریج کرنا ہوتا ہے, ان کے لیے ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ ٹارگیٹ ایسے ہونے چاہیے نا کہ جو بچے کو بھی پتہ چلے کہ اچیویبل ہے, تو اس کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرنی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جو اسٹریس ہے फिर ये इसकी नींद की कमी होती है, और नींद की कमी अगर मैं कहूँ ना कि जहनी बीमारियों की जड़ में से एक बहुत बड़ी जड़ है, तो ये जो है वो दुरुस्त होगा, क्योंकि नींद की कमी से फिर जो है वो स्ट्रेस होता है आगे, मतलब चिड़चिड़ापन आती है, सही तरह से चीजें समझ नहीं आती, खामखा कोई वैसे ही न्यूट्रल सी बात करे तो बंदा उसको मनफी लेना शुरू कर देता है, फिर मनफी सोचें जो है वो गलबा करती है, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, फिर खुद एतमादी खत्म होती है, तो फिर इससे खुद सोजी जिसको सेल्फ हार्म कहते हैं, बच्चा मुख्तलिफ सूरतों में सेल्फ हार्म करने की कोशिश करता है। इसकी बुनियादी एक पहली सीढ़ी सेल्फ हार्म की है कि बच्चा अपने आप को अलहदा रखना शुरू कर देगा, वो दूसरों के सामने आना पसंद नहीं करेगा, हर वक्त अपने कमरे में रहेगा, स्कूल में किसी से बात नहीं करेगा, स्कूल जाने के हवाले से घबराएगा, तो यकीनन जो है स्ट्रेस, नींद की कमी, ये सब जो है वो कॉजेज हैं आगे चलकर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के, सेल्फ हार्म के, सुसाइड अटेम्प्ट्स के बहुत बड़ा फैक्टर है।
एक और बात आखिर में मैं अर्ज करता चलूं, फिर इंशाल्लाह फिर मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊंगा कि कैफीन ये एक चीज है, और ये कैफीन जैसे चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, जूसेस हैं, इनमें बाज़ औक़ात कैफीन होती है, ये शे है जो अशिया में मिली हुई होती हैं। तो अगर ये इसका एक होता है, ये दिमाग को एक्टिव रखती है कैफीन। अगर बच्चा सोने से पहले चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और ये जो आर्टिफिशियल जूसेस वगैरह टाइप की चीजें होती हैं, अगर उसका इस्तेमाल होता है तो उससे उस बच्चे, वो चीजें उस बच्चे के दिमाग को कुछ एक्टिव रखती है, उस एक्टिव होने की वजह से वो दिमाग जल्दी सो नहीं पा रहा होता ज्यादा। मैंने जैसे पहले कहा कि गिजाओं और इन मशरूब और ये जो खाने पीने की चीजें, उसको जरूर नोटिस कीजिएगा ताकि हमारे बच्चों की नींद प्रॉपर हो सके, और मैंने इस ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रख दी हैं। अगर कुछ कॉल्स हो तो दे दीजिएगा।
निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है यसीद जी, बच्चों की नींद के मसाइल के हवाले से, ये जो बच्चों के हाथ में जब मोबाइल दे देते हैं या ऐसी एक्टिविटीज जिसमें बच्चे बिल्कुल गुम हो जाते हैं, ना वो खाने पीने की तवज्जो करते हैं और ना सोने की, बल्कि अब तो स्कूल बंद होने से रूटीनों का ये हाल है कि 12-12 1-1 बजे तक यसीद जी बच्चे जागते हैं। तो इस वाले से जो घर वालों की जिम्मेदारी है, खाली वालिदैन नहीं, जो घर के बड़े हैं और उनकी जो रूटीन के हवाले से जो मदनी फूल होने चाहिए घर वालों के हवाले से, जो वालिदैन भी वक्त पर सोएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी फिर वक्त का ख्याल रखेंगे। इस वाले से मदनी फूल अता फरमा दीजिए, बेसा मकसद की दुआ फरमा दीजिए।
एक इंग्लिश का जुमला है, शॉर्ट टाइम पेन लॉन्ग टाइम गेन। देखा यह गया है कि बच्चों के साथ जिस कदर इब्तदाई सालों में, जब ये 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल और यूं मतलब बढ़ता रहता है, इब्तदाई सालों में जितनी वालिदैन को उसके साथ स्ट्रगल, कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है, करनी चाहिए, हम वो नहीं कर रहे होते, उसको हम बड़े मतलब के वो इजी लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त हमें पेन लेना चाहिए, हमने पेन नहीं लिया तो हमें आगे गेन भी नहीं हुआ। अच्छा, उस टाइम पर हमने पेन नहीं लिया और हमने चलने दिया, कोई तरबियत नहीं, कोई जहां सख्ती करनी चाहिए थी सख्ती नहीं की, अरे छोड़ो यार अभी अपने दूसरे काम करने नहीं करने, हम अपनी जिंदगी का एक अपना अंदाज लेकर चलते रहे और बच्चे को उसकी अपनी मर्जी और उसके अपने इख्तियारात के सुपुर्द कर दिया और उसको उठाकर चंद चीजें दे दी कि ये जाने इसका काम जाने, खाना खाना तो बाहर से मंगा कर खिला दिया, कौन अभी घर में पकाएगा और इतना खिलाएगा, कौन ये करे कौन वो, इस तरह की चीजें की पेन नहीं लिया। हुआ ये कि जब ये बड़ा हो गया और जब आप उससे कोई एक्सपेक्ट करने लगे, अब उसकी चीजें असरअंदाज होने लगी, तो उसकी वो तरबियत ही नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर हमने पेन लिया नहीं। वन टाइम पेन यानी शॉर्ट टाइम पेन लॉन्ग टाइम गेन। अगर हम शुरू से अपने बच्चे को खिलाने पिलाने बिठाने उठाने चलाने सुलाने और उसकी तरबियत में उसको बोलना क्या है, उसको चलने कैसा है, उसको उठना कैसे है, इन तमाम बार बार ये तंग कर, बच्चा है ना तंग करता रहेगा, अब यूं करोगे तो उड़ जाएगा, अब उठाओगे तो बैठ जाएगा, अब बुलाओगे तो भाग जाएगा, आप उसको चलाओगे तो वो रुक जाएगा, वो मर्जी है उसकी। मगर ये चीजें हैं कि जब ये चीजें हम उसके साथ करते हैं और जब करते जब नहीं खा रहा हम छोड़ देते हैं उसको, दूसरा कुछ खिला देते हैं, हम खिला नहीं रहे, हम वो पेन नहीं ले रहे कि बेटा ये सब्जी खा लो, बेटा ये चीजें खा लो, बेटा ये चीजें खा लो, हम ये कर नहीं रहे, हम उसके फरमाइशी प्रोग्राम के पीछे चल रहे हैं। फिर हम कहते हैं बच्चा ये नहीं कर रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा, बच्चा बच्चा जिस वक्त करने का आदि बन सकता था हमने उस वक्त उसके साथ वो काम किया ही नहीं है, और हम खुद को रिलीज करके निकल गए, हम खुद को रिलैक्स करके निकल गए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ। तो फिर हुआ ये कि आगे प्रॉब्लम हो गए, यानी आज बच्चा अगर आपके साथ नमाजों में खड़ा होता तो आगे जाके वो नमाजी बनता, आज आपके साथ बच्चा मस्जिद में जब के उसको ले जाने की उम्र हो जाए मस्जिद में, आप उसको ले जाते तो वो मस्जिद में जाने का आदी होता, आप अपने साथ बैठकर बच्चे को कुरान करीम की तिलावत खुद भी करते तो बच्चा भी करता। अब देखे आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, मैंने आपको अमीर सुनत की एक वीडियो दिखाई थी, आपको याद होगा, शायद आपको याद आ जाए मदनी चैनल पर, अमीर सुनत वो तिलावत कर रहे थे और हसन रजा वो चीजें टक 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 कर रहा था, तो वो क्या चीजें कर रहा था लेकिन आप पढ़ रहे थे, तो आप मतलब ये भगा दो, भागो इधर से निकल जाओ, तो वो जो आप जो काम कर रहे हैं उस काम को तो देख ही नहीं रहा है। आप थोड़ा सा पेन लें, फिर ये होगा कि ये आपको देखकर खुद कुरान लेकर बैठेंगे, तो ये सारी चीजें उसको अपने साथ हमने चलाया नहीं, हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है पेरेंट्स में वालिदैन से, हम बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर चुके हैं और वो जनरेशन हमारी आगे निकल गई है, लेकिन आज भी हमारे घरों में वो जनरेशन मौजूद है जो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल की वो जनरेशन मौजूद है, चाहे वो बेटी की सूरत में बेटी की सूरत में, इवन के 7 8 10 साल तक का भी जो बच्चा भी आपके सामने मौजूद है, आप उसकी तरबियत कर सकते हैं, आप उसको अभी भी अपने साथ एंगेज कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप उस अपनी तबीयतों में तब्दीली प्यारे इस्लामी भाइयों बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अभी लॉकडाउन की वजह से शायद कई लोगों ने तरावियां घर में पढ़ी होंगी, ठीक है, तो क्या आपने अपने थोड़े से बड़े बच्चों को अपने साथ खड़े रहकर तरावी पढ़ने की कोई सूरत बनवाई? कईयों ने नहीं की होगी, बल्कि निकाल दिया होगा, निकाल दो थोड़ा समझा बुझाकर खड़ा कर देता, वो भाग भी जाता, फिर थोड़ा आपको देखता तो फिर आ जाता, फिर यूं आ जाता तो यूं आ जाता, हम सज्दा कर रहे होते तो बीच में आ जाता है, तो यूं सारी चीजें हो रही होती, लेकिन बच्चा देखता आपको नमाजें पढ़ते हुए, आपको तिलावत करते हुए, आपको मदनी चैनल देखते हुए देखता, बच्चा देखता कि अबू ये चीजें नहीं कर रहे, अबू ये चीजें नहीं कर रहे, अबू तो कभी गेम ही नहीं खेली, अबू ने कभी ये काम ही नहीं किया, अम्मी तो मोबाइल से बहुत दूर रहती है। अगर हम ये सारी चीजें घर में करें अपने बच्चों के साथ बाय सेल्फ करें और जहन बनाए कि इसे मैं अपने बच्चों की तरबियत भी कर रहा हूं, उसको बताते रहें, दुआ पढ़, मिसाल के तौर पर आप दस्तरखान पर बैठे हैं, आपने दुआ पढ़ी, अब चंद दिनों तक दुआ पढ़ें बिस्मिल्लाहिल्लज़ी या दुर्रो वाली, और फिर अपने बच्चे बेटा आज सुनाओ, नहीं आएगा, आप उसको लुकमा देते रहे वो सीख जाएगा, लुकमा देते रहे सीख जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अपने बच्चे को साथ बिठाएं, जो भी गाड़ी में बैठते हैं सलातो सलाम पढ़ें, और सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना, ये दुआ पूरी पढ़ें जो सफर की दुआ है, थोड़े दिनों के बच्चे को भी याद हो जाएगी। आप ये देखें प्लीज, उसको मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं, हम वो करें और अपने बच्चों को साथ लेकर करें। जो माँ बाप नाचते कूदते फिल्में ड्रामे देखते हैं, इनके बच्चे नाचते कूदते फिल्में ड्रामे देखते हैं, अगर कुछ ऐसे जो थोड़ा यूं भी कर रहे थोड़ा यूं भी कर रहे हैं, ये ना करें थोड़ा थोड़ा ये नहीं, वो कभी जाते तो बेटा बिस्मिल्लाह शरीफ सुनाओ तो बेटा ये सुना दो, बेटा जरा कलमा पढ़ के सुना दो, तो मजा भी आदमी करते, तो अगर खुदा ना करता कोई गुलूकार अदाकार आ गया, बेटा वो गाना याद है ना, वो गाना सुनाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल वन वे सिर्फ मदीने का रास्ता दिखाएं अपने बच्चों को और बस इसी तरफ लेके जाएं। तो ये बच्चों को इस तरह की अगर आप और हम तरबियत देने में कामयाब हो जाएंगे तो मेरे रब ने चाहा तो इसके इतने अच्छे और खूबसूरत नतीजे सामने आएंगे कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आइए कुछ कॉल्स लेते हैं।
नींद ना आने की बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि रात देर तक हम लोग मोबाइल फोन यूज करते रहते हैं, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक सोने से तकरीबन 40 मिनट पहले हमें ये इस तरह की डिवाइसेस से दूर रहना चाहिए ताकि हमें अच्छी नींद आ सके। और दूसरी भी बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से नींद की कमी हो गई है, जैसे कि दिमागी खुश्की, जहनी कोई परेशानी हो और ब्लड प्रेशर हाई हो किसी का, और बहुत से नौजवान जो हैं वो माली परेशानियों की वजह से भी उनको नींद नहीं आती, और फिर ये एक बीमारी है जिसको इंसोमनिया कहते हैं वो लग जाती है, और इससे फिर मोटापा भी होता है अगर नींद पूरी ना हो तो, और बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं इंसान को। तो बस ये है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और ऐसी नींद अता फरमाए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते।
सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ बिल्कुल, ये हो, ये भी वालिदैन पर भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपने सोने और जागने के टाइमिंग ऐसे रख लेंगे जो आपके बच्चों के साथ सूट करते हो, और उनको सुलाने में मेहनत करनी पड़ती है। बादो क्या होता है, बच्चे को कमरे में डाल दिया और कमरे में डालकर भूल गए। आजकल चूंकि बच्चों के कमरे अब अलग बनते हैं बेडरूम वगैरह, तो बच्चों को कमरे में डाल दिया और टीवी भी दे दिया और बच्चों को रिमोट भी दे दिया है और बच्चों को सारे वो चैनल्स भी दे दिए और कमरे में डाल दे बेटा अब सो जाओ, बच्चा कहाँ से सोएगा। तो अल्लाह करे कि हम इन तमाम तर चीजों पर अमल करने में कामयाब हो जाए। जी कॉल दें।
मेरा नाम सईदा खतीजा है, मैं वाकिफ से बात कर रही हूँ। मेरे प्यारे निगरानी शुदा, दारुल मदीना का सिलेबस भी तो बहुत मुश्किल है, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? जज़ाकअल्लाह खैरा।
आपकी बात शायद दारुल मदीना वालों ने सुन ली होगी। आसान होना चाहिए, आसान होना चाहिए। वो ये गया है कि बस रेस लगी हुई है तालीम के नाम की, सच्ची बात यह है रेस लगी हुई है। और बात चीज ऐसी है जिसका पढ़ाना जैसे कंपल्सरी सा है, कुछ तो कुछ किताबें दारुल मदीना ने अपनी भी बनाई हैं और बना रहा हमारा पूरा कैरिकुलम और निसाब का डिपार्टमेंट है, लेकिन रेस लगी हुई है, ये भी पढ़ाना ये भी पढ़ाना, इतना पढ़ाना इम्तिहान इन तमाम तर चीजों का आएगा। लेकिन जाहिर है कि ईजी होना चाहिए, बच्चों के लिए ईजी होना चाहिए, बहुत ईजी होना चाहिए। और सच्ची बात ये कि प्यारे इस्लाम भाइयों, तालीम से ज्यादा तरबियत बहुत जरूरी है, तरबियत बहुत जरूरी है। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम तरबियत का है। अगर हम तरबियत करें और तरबियत के लिए बहुत हौसला हिम्मत और बड़ा हिल्म और बुर्दबारी चाहिए तरबियत के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक मैं आपको बेहतरीन अंदाज बयान करता हूँ। इसको इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इहया उलूम की दूसरी जिल्द के पेज नंबर 1312 पेज पर बड़ा प्यारा एक वाकया इमाम गजाली अलैह रहमान नकल किया है कि एक बार किसी अरबी ने, अरबी देहात से जो लोग होते हैं देहात गांव के, इसे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ चीज तलब की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे वो शे अता फरमा दी और उसे इरशाद फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया। अरबी ने कहा कि नहीं और ना ही आपने कोई अच्छा काम किया। रावी बयान करते हैं कि इस बात से जो सहाबाए किराम अलैहिम रिजवान जो मौजूद थे वो काफी गजबनाक हुए कि ये किस अंदाज से वो बात कर रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। तो वो आगे बढ़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। फिर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठकर अपने घर तशरीफ ले गए और वहां कुछ शे आपने ली और उस अरबी को अपने पास बुलाया और उसे कुछ अता फरमाया। और अता फरमाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे अब इरशाद फरमाया कि क्या मैंने तेरे साथ कोई भलाई की, कोई एहसान किया? तो उसने अर्ज की कि जी हाँ, अल्लाह ताला आपके अहले खाना और खानदान को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने उसे इरशाद फरमाया کہ تم نے جو کچھ پہلے کہا اس وجہ سے میرے صحابہ کے دلوں میں کچھ ہوا نا، مطلب ان کو عجیب سا لگا نا، برا لگتا ہے، اگر تم چاہو تو ان کے سامنے بھی وہی کہہ دو جو ابھی تم نے میرے سامنے کہا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے وہ چیزیں چلی جائیں. اس سے عرض کی جی اچھا. اگلے دن صبح یا شام کو وہ عربی پھر حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عربی نے جو کہا تھا پھر میں اسے مزید میں نے اس کو کچھ دیا تو اس سے وہ راضی ہو گیا. یہ عربی کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ تو اس عربی نے عرض کی جی ہاں اللہ آپ کے گھر والوں اور آپ کے خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا بڑی ایمان افروز وہ بات ہے. آپ فرماتے میری اور اس عربی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس اونٹنی تھی اور وہ بھاگ گئی، بدک کر بھاگ گئی، تو لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں اونٹنی کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ مزید بھاگتی چلی گئی. اتنے میں اونٹنی کا مالک آ کر آواز دیتا ہے کہ میرے اور میری اونٹنی کے درمیان سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں اس پر زیادہ مہربان اور اسے زیادہ جاننے والا ہوں. چنانچہ اونٹنی کا مالک اس کے سامنے اس کی طرف بڑھا اور زمین سے کچھ گھاس پھوس اٹھائی، اس کو دکھائی، آہستہ آہستہ اسے اپنے پاس بلایا، حتیٰ کہ اس کے پاس آ گئی. اس نے اسے بٹھایا، اس پر کاٹھی رکھی جو اس پر جو اونٹنی پر جو بیٹھنے کے لیے جو ایک سیٹ رکھتے ہیں. جب اس عربی نے کچھ کہا تھا بٹھایا اور سوار ہو گیا. تو یہ مثال دی سرکار نے ارشاد فرمایا لہذا جب اس عربی نے کچھ کہا تھا اگر میں اس وقت تمہیں نہ روکتا اور تم اسے قتل کر دیتے تو وہ جہنم میں جاتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصلاح کا، تربیت کا انداز یہ بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا تو وہ جس رنگ کے اس نے کپڑے انہوں نے کپڑے پہنے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند نہ آیا، آپ نے اس سے کچھ نہیں فرمایا. جب وہ چلے گئے تو کسی کو ارشاد فرمایا کہ جا کے اس کو سمجھا دو کہ وہ اس رنگ کے کپڑے نہ پہنے. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. کوئی ایسا کام کرتا تو میرے آقا دوسروں کو روک دیتے، پھر اسے باقاعدہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھاتے، اس کی تربیت فرماتے، اس کی اصلاح فرماتے اور دلائل سے بات کرتے کہ یہ جو میں منع کر رہا ہوں یہ کیوں منع کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے منع کرنے کی، سمجھا دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم جاہریانہ انداز میں، ہم سولاتے بچوں کو، کھلاتے بچوں کو، اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، ہمارے انداز جاہریانہ ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ لے جا کر اس کی اصلاح فرمائی، عطا بھی فرمایا، اصلاح بھی فرمائی. ہم سب کے بیچ میں اصلاح کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، ہم سب کے بیچ میں اپنے بچوں کی اور اپنے شاگردوں کی، اپنے اسٹوڈینٹس کی اور اپنے ساتھ لوگوں کی تربیت کا ذہن رکھتے ہیں. آج دیکھیے کہ آج لوگ مطلب بچے بڑوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی ابو ڈانٹ دیں گے، ابھی ابو جھاڑ دیں گے، ابھی سب کے سامنے کلاس لے لیں گے. لوگ اپنے بڑوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جب بڑوں سے دور ہو جائیں گے تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ جب استاد سے شاگرد بھاگے گا تو اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ صرف کلاس روم کی حد تک، ایک درجے کی حد تک ہی وہ استاد کے آگے اسے بیٹھا رہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میں جاؤں گا تو سب سے پہلے تو استاد صاحب نے میری بےعزتی کرنی ہے. جو کرتے ہوئے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، شفقت دینے والے، پیار دینے والے، محبت دینے والے، عزت دینے والے، وقت دینے والے، تربیت کرنے والے، ایسا نہیں کہ والدین ایسے ہیں ہی نہیں، ہیں مگر کتنے، ایسے استاد ہیں مگر کتنے ہیں. کیونکہ جس عمر میں ان کو تربیت کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی تربیت کی ضرورت ہے نا، وہ کرے ایسی حرکتیں رہے نا کہ آپ کہہ رہے کہ تربیت کی ضرورت ہے. تو تربیت رو میٹیریل کو تو بنانا پڑتا ہے نا، خام مال کو تو بنانا پڑتا ہے، خام مال خود سے تو نہیں نا بن جاتا، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے कि इसको बनाना कैसे बनाना है, इसकी इसकी क्या चीज बनानी है। तो अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों की तरबियत करने में सही तौर पर कामयाब हो। इसमें जरूरी है, मैंने नियत की है इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसी चीजें हदीस पाक से या इमाम गजाली अलैहि रहमान ने जो बयान किया उससे मैं अर्ज करूंगा, बल्कि मैंने नियत की हुई है कि इंशाल्लाह जो हमारे नौजवान बैठे हैं मदनी चैनल पर, इंशाल्लाह जो समझ पाते हैं उनको भी इंशाल्लाह कुछ चीजें मैं बयान करूंगा कि हमें किस तरह अपनी आदतों को और अपने किरदार को बनाना और संवारना है। माशाल्लाह आज 18वीं शब हो गई है, पिछले कई सिलसिले से बहुत सारी बातें इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की और दीगर मामला से मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर, नफ्सियाती हवाले से, बच्चों की दीगर आदत और अतवार के हवाले से, वालिदैन कहाँ कहाँ पर मतलब के मिसिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वालिदैन अच्छी तरबियत कर रहे हैं, इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बयान करने की कोशिश की जा चुकी है। और अब चूंकि माह रमजान के सीधी बात यह है कि आखिरी अय्याम चल रहे हैं और ये जो मगरिब से इशा का जो ये बयान होता है ये तो खास यकीन माने माह रमजान ही का मैं समझता हूँ एक सौगात है, कि मेरा अपना एक जहन भी बना हुआ होता है कि इस वक्त एक तादाद मदनी चैनल के सामने बैठकर देख और सुन रही होती है और आपका फीडबैक भी ऐसा ही आता है, पौले भी इसी तरह करते हैं कि कोई है वो खा पी रहे होंगे, कोई चाय पी रहे होंगे, बैठे हुए होंगे, अभी थोड़ी देर में नमाज की तैयारी हो या कहीं नमाज की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। तो ये एक गनीमत होता है वक्त, और कोशिश यही होती है हमारी कि ये मौजू खास आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, आपके घर बार से रिलेटेड हो और इसमें नेकी तकी, घर ही मेन चीज है और घर में अगर हमने अपने इस्लाह का माहौल बना लिया, अगर ये चीजें हम करने में कामयाब हो गए और जो बच्चों की जिम्मेदारी बच्चे पूरी करने में कामयाब हो जाए, बड़ों की जिम्मेदारी बड़े पूरी करने में कामयाब हो जाए, तो इंशाल्लाह माशरा मदीना मदीना हो जाएगा, अमन प्यार का कहवारा बनेगा। यही तो घर के अफराद होते हैं जो फिर बाहर निकलते हैं, आदतें हमारी दुरुस्त होंगी तो बाहर का माहौल भी तो अच्छा होगा ना। कॉल्स पे
मेरा नाम आसिफ है और मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि बच्चों के स्ट्रेस का मौजू चल रहा है, तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में हाई स्कूल में टीचर हूँ। तो बच्चे जो हैं वो सजा के बगैर, खासतौर पर देहात के बच्चे, वो पढ़ते ही नहीं है। मेरा ये 8 साल का तजर्बा है। तो ऐसे हालात में फिर क्या किया जाए, वो स्ट्रेस लेते नहीं बल्कि स्ट्रेस देते हैं टीचर्स को, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। तो ऐसे मामले में आप क्या आशा फरमाएंगे?
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। आपने नरमी, प्यार, शफकत, मोहब्बत के साथ जो तरबियत फरमाई है, जिसका मैंने अभी एक झलक आपको बयान की, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारा एक ट्रेन बन चुका है सख्ती का, और बच्चों को भी असल में वो आदि हो जाते हैं बाद में, वो मिजाज बन जाता है। हमें माहौल बदलना है। मैं आपको भी सर्च करूं, दुनिया में मेथड ऑफ टीचिंग रियली बहुत चेंज हो चुका है। अब ये सख्ती मारपीट ये मेथड ऑफ टीचिंग में रहा ही नहीं है, बल्कि इसको तो बिल्कुल वो नेगेटिव लिया जा रहा है। तो मारपीट से बचे, जहां थोड़ी बहुत तालिबे इल्म पर एक हल्का फुल्का सा प्रेशर डाला जाता है, हल्की फुल्की चीजें ऐसी होती हैं कि जिससे एक स्टूडेंट को थोड़ा सा वो होता है कि यार ये नहीं करूंगा तो यूं हो जाएगा, लेकिन उसमें भी एक इत्तदाल होता है, म्याना रवि होती है, मगर मैक्सिमम जो है ना वो शफकत, प्यार, मोहब्बत के साथ वक्त दें, इनको लेकर बैठें, इनको थोड़ी सी इनकी तरबियत की तरफ जाएं, इनके अंदर वो कमजोरियां देखें। वो कमजोरी क्या, वो कमजोरी सख्ती से कितनी निकली, आप देख लीजिए जितनों पर सख्ती करते हैं ज्यादातर बच्चे ढीठ हो जाते हैं, उनकी जो गलतियां होती हैं वो पुख्ता हो जाती हैं, फिर उसी तरह के लड़कों में उठना बैठना शुरू कर देते हैं जिनकी में इनको ये वो मजा आ रहा होता है। मेरी तो यही दरख्वास्त है तमाम तर पढ़ाने वालों, सिखाने वालों से, जो मुअल्लिम है, मुरब्बी है, या तरबियत करने वाले जो लोग हैं, तो वो मतलब के ये ग्रेड है, नरमी शफकत, नरमी शफकत बर्दाश्त, नरमी बहुत आगे जाकर फिर सख्ती के दर्जे शुरू होते हैं, सख्ती ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, डी ग्रेड, फिर सख्ती की भी दर्जे शुरू होते हैं। हम डायरेक्टली एग्रेसिव अटेम्प्ट ना करें, ये हिकमत अमली आनी चाहिए हमको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी
जैन मुस्तफा है, मैं मगल येलो से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर नींद ना आए तो हम क्या करें?
नींद ना आए तो क्या करें? नींद ना आए तो अल्लाह को याद करें, जिक्र करें, अल्लाह अल्लाह करें, दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नींद आ जाएगी। वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें। होता यह है कि बच्चे बहुत लंबा सोते हैं, अभी तो आजकल भी बहुत लंबा सो रहे हैं, रात को नींद नहीं आती। अब दोपहर को उठेंगे देर से, तीन तीन चार चार बजे उठेंगे तो रात को नींद कहां से आएगी? तो नींद तो एक टाइम के बाद आती है ना, तो उठने जागने के टाइमिंग थोड़े सेट करके रखेंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि बॉडी क्लॉक नाम सुना है आपने, बदन के अंदर भी है ना, हमारे जिस्म के अंदर भी एक घड़ी है, जो आप देखिए वक्त तो भूख लगती है, इसी टाइम पर भूख लगेगी, फिर उसी टाइम पर नींद आएगी, तो पूरी एक रूटीन होती है। जब आप रूटीन पर चलेंगे, इवन के कहते छुट्टी के दिन भी अपनी रूटीन ना डिस्टर्ब करें, एक दिन की रूटीन डिस्टर्ब करते अगले दिन की रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है। जी
हाजी साहब, ने आज जो टॉपिक लिए बच्चों और नींद, वालदेन आजकल अमूमन बच्चों से जान छुड़वाने के लिए भी उनको फिल्में दिखानी है, दिखाती हैं जिन भूत की आसेप, ताकि बच्चे उनको तंग न करें, क्योंकि बच्चे अगर पार्क बैठेंगे तो हाँ कोई तोड़ फोड़ करेंगे, तो फिर बच्चे जब पूरा दिन फिल्में देखेंगे इस तरह की तो उनको रात को फिर डर लगता है और वो सोते नहीं है, उनको डर लगता है, और तो वालदेन क्या करें?
वालदेन क्या करें? वालदेन को क्या जरूरत है ये फिल्में ड्रामे और इस तरह की चीजें देने की? मैं तो कहता हूं कि अभी जैसे जो कहते हैं कि जनाब ये क्या करें बच्चों को ये ना दे, तो आपके घर में हो सकता है कि आपकी 60 साल की या 65 साल की 70 साल की अम्मी या नानी या दादी हो, आप मालूम करें, आप इनसे पूछें आपने हमको कैसे बड़ा किया था, हम भी तो बड़े हुए, हमसे पहले वाले भी तो बड़े हुए, ये कैसे सो जाते थे, ये कैसे पाले जाते थे, उस वक्त तो डिवाइस नहीं थी, उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे। तो अब मैं भी मानता हूं कि ये बड़ा मतलब कि अजीब गंभीर मसला है, ये ना गंभीर मसला है, मैं कहता हूं कि जिस मौजू पर अक्ल वालों की अक्ले भी काम ना करती हो ना, वो बहुत हसास मसला हो जाता है, और इस वक्त वाकई अक्लों वालों की अक्ले भी सही काम नहीं कर रही होती कि करें क्या, बचाएं कैसे, क्योंकि पता जब चलाए ना तब कहते हैं कि सब पानी सर से गुजर चुका है, ऐसा लगता है बहुत आगे निकल गई कौम। जब इसके साइड इफेक्ट आए तो अब सब हम जागे हैं कि अब बच्चों का क्या बनेगा, डिवाइस इनकी आंखों को कमजोर कर दिया, जहनों को कमजोर कर दिया, और ये सब कुछ हो गया। और मैं पहले कहता हमारी चूंकि शुरू से तवज्जो ही नहीं रही है, और एक हम खुद कंफर्टेबल जोन में चले गए, आराम से चले गए, यार चलो बच्चे ये लेकर बैठ गए, लेकिन आज जब हमारे सामने मसला आया कि इनके अखलाक बर्बाद हो रहे हैं, ये एग्रेसिव हो रहे हैं, ये डांट डपट वाले हो रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े वाले बन गए हैं, ये तोड़ फोड़ वाले बन गए, इनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, इनके तालीमी मयार बर्बाद हो रहा है, इनकी गर्दनों में दर्द हो गया है, इनके इनकी फिजिकल फिटनेस खत्म हो रही है, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये सो नहीं पा रहे हैं, तो पता चला तो पता वो ये तो ये सारी चीजें तो हम ही ने करके दी थी सारे बच्चों को। अब वो चीजें बच्चों को लेनी कैसे है, इसके लिए आपको बहुत और हम सबको मिलकर बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और इससे मतलब कि किसी और तरफ लेके जाना पड़ेगा, किसी और एक्टिविटीज की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ तोहफा या इनाम रखें कि आप ये करोगे तो मैं आपको ये दे दूंगा, ये करोगे तो ये दे दूंगा, ये करोगे तो ये दे दूंगा, यू करके उसको थोड़ा थोड़ा आप ये लेकर चले, उसको दीगर एक्टिविटीज की तरफ लाएं। और अगर मिसाल के तौर पर इसको जैसे मोबाइल की तरफ अगर वो है किसी किसी टाइम तक, तो उससे मतलब के वो हमारे जो दावत इस्लामी की जो एप्लीकेशंस है, किड्स की एप्लीकेशंस है, काफी किड्स की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, आप उसे डाउनलोड करके दें। अब वो मोबाइल मांगे तो उसको कहें कि अभी नहीं, पहले ये करो, पहले वो करो, पहले इसको थोड़ा सा अच्छी और नेक काम और सुथरे काम कराएं, कोई एक दो और एक्टिविटीज करें, इसका टाइम निकालें, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए, फिर उसको थोड़ी देर के लेकर देना है तो उसके अंदर से भी उसकी तरबियत की चीज निकलनी चाहिए, मगर इसमें भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी आपको, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन एहतियात और हिकमत अमली के साथ ही हम इस जंग को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी और अपने बच्चों की, अपनी नस्लों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजी नमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले।